ये उस पर्सनैलिटी की बात हो रही है कि जिसको हक का तो पता है लेकिन वो हक पे चलना नहीं चाहता। तो ये है कि जहां पे उसको फायदा मिलता है तो वो उस फायदे पे थोड़ा सा हरकत करता है कि उसको फायदा मिल रहा है। जिस तरह इशारा दिया जा रहा है कि जिस तरह जंगों से वापस आते थे और माले गनीमत होता था,
अस्सलाम वालेकुम जी, जज़ाकअल्लाह खैर उमर भाई, बड़े अच्छे तरीके से आपने ये जो पूरा एक मजमून चल रहा था हमारा वो भी आयत नंबर 20 पे ख़त्म हुआ। और ये मुनाफिकीन के बारे में ही दोनों अल्लाह ताला ने तमसीलें दी हैं, जो बात चल रही है वो मुनाफिकीन के हवाले से चल रही है। तो इसमें जो सबसे ऊपर अल्लाह ताला ने जो एक बल्कि तीसरी भी तमसील ही है, जो अल्लाह ने एक हुक्म भी एक खबर की फॉर्म में हमें बताया कि इन्होंने तजारत कर ली है, इन्होंने गुमराही खरीद ली है हदायत के बदले। ये बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि इंसान तो चाहता है कि मैं नफ़े की तजारत करूँ, हमेशा मैं उसमें नफ़ा हो, और अल्लाह ताला ने कहा कि इनके लिए ये जो तजारत है ये राबी हत नहीं है, नफ़े वाली नहीं है। अगर ये सोच रहे हैं कि ये दुनिया के फ़ायदे के लिए या अपने इमीजिएट कुछ ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए ये काम कर रहे हैं, दोनों तरफ से फ़ायदा उठा लिया जाए। क्योंकि मुनाफिकीन के फॉर्म में देखा जाए तो उनका माइंडसेट यही था कि अगर ये मोमिनीन जीत गए तो फिर भी हमें फायदा है, अगर मोमिनीन हार गए तो फिर भी हमें फायदा है। तो वो दोनों फॉर्म से फायदा उठाना चाहते थे, जिस तरह लोग कहते हैं कि दुनिया और आखिरत की भलाई जो है हमें चाहिए, तो वो एक एक फॉर्म कांस्टेंट बन जाती है। मतलब उसके अंदर हमें भी अल्लाह ने फरमाया कि रब्बाना आतिना फिर दुनिया हसनत व फिल आखिरत हसनत, लेकिन इसका जो ताल्लुक है ना वो मुनाफिक के साथ बड़ी ईजीली जुड़े था। जब अगर आप ये समझना शुरू कर दें कि दुनिया अलहदा है और आखिरत अलहदा है, कि दुनिया की जिंदगी जो है वो उसका हम अच्छी दुनिया अल्लाह से मांग इस ले रहे हैं, और अच्छी दुनिया होती ही वो है जो आपकी आखिरत को बेहतर कर रहे हैं। जो आपकी दुनिया आखिरत को बेहतर नहीं कर रही वो अच्छी दुनिया नहीं है, चाहे आपको इतनी मर्जी अच्छी लग रही हो। तो ये चीज है जो प्रैक्टिकलिटी के एंगल से हम गुफ्तगू करें तो वो हमें अपने जहन में रखनी चाहिए कि जब हम दुनिया की बेहतरी या दुनिया की जिंदगी में तरक्की की दुआ मांगते हैं अल्लाह से, तो उसका मकसद यही होना चाहिए कि ये मैंने जो भी मुझे इसमें वसाइल मुयसर रहेंगे तो उसको मैंने आखिरत के अपनी आखिरत की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना है, अपने दूसरों की आसानी के लिए, हदायत के लिए। तो ये एक पैराडाइम शिफ्ट है जो आई थिंक हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अहले ईमान जो है वो हमेशा आखिरत को क्वेश्चन में रखते हैं, आखिरत को क्वेश्चन में रखे बगैर उनकी ना कोई हदायत होती है ना उनकी कोई तजारत होती है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको हम सेपरेट आउट ना करें। तो मैंने ये जो हमारे पुराने डिस्कशन हो उसके साथ फिर उसको जोड़ना था, तो अगर कोई और भाई इसमें ऐड करना चाहें तो।
जज़ाकअल्लाह।
अच्छा, आज वो हमारे ताहिर भाई नहीं आए, वो उनके पास माशाल्लाह काफी सवाल होते हैं हमेशा, तो
लेकिन आतिफ भाई आए हुए हैं,
आतिफ
इनको
भाई आए हो
थोड़ा।
तो आतिफ भाई कुछ इसमें ऐड करें।
जी बहुत शुक्रिया, मैं तो खुद सीखने के लिए आया हूँ, मैं तो खुद तालिब इल्म हूँ जनाब।
हम सारे तालिब इल्म आतिफ भाई।
आतिफ भाई ये तो बेस लाइन है सब तालिब इल्म में।
इसमें जो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जो आयत आखिरी जो आयत है जिसमें बारिश का जिक्र है, उसमें बारिश से हम ये भी मुराद ले सकते हैं कि वो जो बारिश है वो असल में इस्लाम की नेमत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमेशा जब भी कुरान में बारिश का जिक्र किया है तो उसको अपनी नेमत और एक बरकत के तौर पर उसको इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर अगर हम उस बरकत के तसव्वुर में इसको लें तो आसमान से अल्लाह ताला ने इस्लाम की बरकत जो है वो नाजिल की, और लेकिन जो मुनाफिकीन हैं ये तो हम सबका ही तजर्बा है कि जब बारिश होती है गरज चमक होती है, जो उसकी कड़क होती है काफी परेशान कुन होती है। इंसान एक मरतबा तो बिल्कुल खौफ में मुब्तला हो जाता है जब जोर से कहीं बिजली गिरती है या उसकी आवाज आती है, तो एक कड़ाका सा होता है, इंसान उसे सहम जाता है। तो वो जो कड़ाके हैं और बिजली की जो चमक है जो आंखों को खीरा करने वाली है, वो उस इस्लाम के दावत के अंदर जो आने वाले मसाइब हैं हम उनको उस सिमत में ले सकते हैं। तो मुनाफिकीन जो हैं वो क्योंकि हमेशा अपने तौर पर अपनी अकल के हिसाब से उनकी हमेशा यही कोशिश होती है कि हम कोई ऐसा रुख इख्तियार करें, ऐसी पार्टी के साथ हम मुआहदा करें कि जो फायदे में रहे, हमें ना कोई मेहनत करनी पड़े ना कोई हाथ पांव मारने पड़े, बस हमें बैठे बिठाए तिजारत जो हम करेंगे उसमें हमें फायदा ही मिलता रहे, कोई नुकसान ना हो। अब वो उनका क्योंकि ये उनकी जो फितरत है या उनकी जो तबीयत है वो उन मसाइब और मुश्किलात को उठाने की पहल नहीं होती। इस वजह से वो जब उनको थोड़ा सा मुनाफा नजर आता है, जब वो बारिश के अंदर थोड़ा सा रास्ता नजर आता है, जिस तरह हम देखते हैं अक्सर कि बारिश होती है, थोड़ी सी देर के लिए मंजर रोशन होता है तो इंसान को थोड़ा सा रास्ता नजर आता है, दो चार कदम कि अच्छा ये दो चार कदम मैं आगे चल लेता हूँ, और जित जहां तक उसको नजर आता है, फिर वो वहां टिटक जाता है। फिर दोबारा बिजली चमकती है, उसको थोड़ा सा रास्ता नजर आता है, थोड़ा सा फायदा नजर आता है, वो फिर दो कदम चल लेता है। तो इस तरीके से उनकी जो काविशें हैं या उनका जो मकसद है, वो सिर्फ दो चार कदमों या मुख्तसर छोटे से मुनाफे तक महदूद रहता है, और कभी भी वो उस मुस्तकिल नूर और मुस्तकिल रहनुमाई से फायदा नहीं उठा सकते। इस चीज को मैं थोड़ा सा इस तरह से सभी समझाऊं।
जी जजाकल्ला। ये आपने तजर्बे की बात की, मेरा भी एक इसमें थोड़ा सा ज़ाती तजर्बा है। मेरा ख्याल है मैं 8 से 9 क्लास में था, तो साइकिल के ऊपर मैं एक दफ़ा रात को घर वालों ने सौदा लेने भेजा था। तब लोड शेडिंग होगी, वापसी पे मैं आ रहा था, तो बिल्कुल अंधेरा था और वो सड़क पे आप साइकिल पे जा रहे हो, और ऐसी ही सिचुएशन थी जो तो उस जमाने पर मेरे कानों में ये कुरान की आयत गूंज रही थी। ये जो तमसील अल्लाह ताला की, ये बड़ी पावरफुल है। अगर आपको भी अंधेरी रात में चले और जब ये बारिश हो रही होती है और ऊपर से आसमान का वो जो जब कड़का हुआ, कुछ नजर ही नहीं आ रहा होता ना कि आगे किधर जाना है आपने, और हर तरफ घटा टोप अंधेरा होता है, तो इंसान बहुत ज्यादा डर जाता है कि ये क्या हो रहा है। जब लाइट आती है फिर मैं थोड़ी साइकिल चलाता था, फिर जब वो समझ आता है जब कुछ नजर नहीं आ रहा, आगे नहीं जाते जाना, तो बंदा रुक जाता है। तो ये इसको अगर आप फिजिकली एक्सपीरियंस करें तो फिर इसकी तमसील मेरा ख्याल ज्यादा दिल में घर करती है कि ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन होती है इंसान के लिए, क्योंकि इंसान जो है वो उस चीज से, और अल्लाह ताला ने जो मिसालें हमें समझाने के लिए दी हैं कि इंसान जो तजर्बे में उन चीजों को महसूस करता है। जो ये भी बात हो रही है कि जो नूर है, और इसमें भी सारी जो डिस्कशन है कि जो नूर है जो अल्लाह ताला, और जुल्मत है वो गुमराही के फॉर्म में, और नूर है जो उस जुल्मत को, उस जुल्मत को खत्म करता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम इंसान को मैं लेके आता हूँ, मेरे जुल्मत इला नूर, नूर की तरफ लेके जाता हूँ। तो ये जो नूर है, ईमान का नूर है, कुरान नूर है, और ये चीजें हैं जो अल्लाह ताला की तरफ हमें बुलाती हैं, हदायत की तरफ बुलाती हैं। और ये चीज काफी सोचने वाली है कि हम अपनी जिंदगियों में जब ये इस तरीके से मामलात को लेके चल रहे होते हैं तो हम किस हद तक आगे देखते हैं, क्योंकि जो नूर जिस बंदे के लिए दिल में कुरान का नूर होता है वो आखिर तक मामले को देख रहा होता है, और यही है कि वो एक तरह का लॉन्ग टर्म में आखिरत के लिहाज से देख रहा था, वो भी एक तिजारत कर रहा है। हम अहले ईमान भी एक तिजारत कर रहे हैं अल्लाह के साथ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने इनकी जानें खरीद ली जन्नत के बदले में, तो हम भी अपनी जानों को अल्लाह के आगे बेच चुके हुए हैं। लेकिन हमारा जो स्पेक्ट्रम है या हमारा जो देखने का अंदाज है वो सिर्फ लिमिटेड नहीं है इस दुनिया तक, वो आखिरत उसमें इंक्लूडेड है, तभी ये दुनिया मेक सेंस करती है। अदरवाइज तो जो दुनिया है वो मेक सेंस नहीं करती। इसलिए सूरह बकरा के शुरू में भी अल्लाह ताला ने जो फरमाया कि वो बिल आखरत हम यकीनून, और वो आखरत पर यकीन रखते हैं, तो वो आखरत का जो यकीन है वो हर हर स्टेप के ऊपर हमारी जो एक अहले मतलब ईमान वाले का जो वर्ल्ड व्यू है वो उसको सेपरेट करते काफिर से या मुनाफिक से, कि अहले ईमान का वर्ल्ड व्यू में आखरत बहुत ज्यादा सेंट्रल पोजिशन पे होती है। जजाकल्लाह।
जबरदस्त। अच्छा, इसमें एक चीज मसीद हम डिटेल बीच में डाल देते हैं जस्ट टू मेक इट मोर ओपन। देखें, ये तो मेरे ख्याल में इस आयत पर डिस्कशन हो गई है कि जुलमात से यहाँ पे क्या मुराद है, और आतिफ भाई ने जो तस्करा किया है कि अल्लाह ताला ने जो आसमान से नाजिल करने वाली चीजों का जिक्र किया है ना, उसमें कुरान में नजूल के लिए कुरान है, मलाइका हैं, रिस्क है, अल्लाह ताला जो ऊपर से नाजिल करता है उसकी तमसीलें अल्लाह ताला ने दी हैं। तो ऊपर से जो चीज़ें नाजिल होती हैं वो इंसान की बहबूद और फलाह के लिए और उसकी कामयाबी के लिए अल्लाह ताला चीज़ों को नाजिल करता है। इसी तरीके से जो ऊपर उठती हैं वो अमाल हैं इंसान के जिसका तذکرہ हुआ है, और इंसान की रूह है जो ऊपर उठती है उसकी तमसील मिली है। ठीक है, तो एक तो ये रेफरेंस माशाल्लाह जबरदस्त है। दूसरा ये कि जुलमात का यहाँ पे उमर भाई ने जिस तरह बात की है, जुलमात का यहाँ पे मतलब वो उस वक्त का माहौल था जो जुलमत असल में छाई हुई थी, उसमें वो जुलमत इतनी गहरी थी कि बारिश जो अल्लाह ताला नाजिल कर रहा था अपनी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके, तो वो उनके लिए गरज और चमक और कड़क बन के उन पे गिर रही थी असल में, क्योंकि जो उनके तरजीहात थे जिंदगी में वो उनसे टोटली अपोजिट 180 डिग्री पे था सारा मामला। आज हमारा भी काफी अच्छा हाल यही है कि ख्वाहिशात के पीछे हमारी जिंदगी ज्यादा गुजरती है, तो अल्लाह हमें भी बचाए इन चीजों से, कि निफाक से। तो मैं आगे जो इसको बात को बढ़ाना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पे जब आप उस जुल्मत के थोड़े एनालिसिस करेंगे तो बात मजीद खुलेगी। हर मुआशरे में तीन तीन किस्म के तबके होते हैं। जब इस तरह का नबी आता है ना जमीन के ऊपर, अल्लाह ताला भेजते हैं, तीन किस्म के तबके बन जाते हैं। एक वो जो ईमान ले आते हैं, जो अमूमन थोड़े होते हैं। एक वो जो उमरा तबका है, अमीर तबका है, जिनके पास अनान हुकूमत है, ताकत है, उनके पास वसाइल हैं, वो उनके मुखालिफ खड़ा हो जाता है, क्योंकि उनको अपने हाथ से वो चीजें जाती नजर आती हैं जो उनके हाथ में मौजूद होती हैं। तो लाजमी बात है, समझ अगर आ भी रही है तो फिर भी मुखालिफ खड़े होते हैं। एक तीसरा तबका होता है जो कहता है, यार ठीक ठाक माहौल था, ये किधर से अब ये माहौल बदल गया है। ठीक है, हम समझ रहे हैं कि नबी पाक सल्लम ये सही है, इस्लाम भी हक है, लेकिन यार क्यों ना कोई दरमियान दरमियान का रास्ता निकालते हैं। वो जो लोग हैं उनको भी हम एडजस्ट कर लेते हैं, इनको भी एडजस्ट कर लेते हैं, कोई दरमियान का रास्ता निकालते हैं कि हमारे जो बिजनेसेस हैं, हमारे फवायद हैं, देखो इर्द गिर्द के हमारे जो बिजनेसेस हैं वो तो तबाह हो जाएंगे। उस वक्त की सिचुएशन देखें तो मक्का में तो हमारा मरकज है तजारत का, फिर लोग इस तरह किस तरह आएंगे, यानी वो सारा एक उनके अंदर एक सोच होती है ना। तो ये जो दरमियाने तबका है ना, ये बुनियाद है निफाक की उनकी असल में मेनली। और अल्लाह ताला इन आयात में हमें ये वाजे कर रहे हैं कि ये जो ऐसे लोग हैं जो कि कहते हैं यार थोड़ा सा ये वाला ले लो, थोड़ा इस्लाम ले लेते हैं, थोड़ा सा लिबरलिज्म ले लेते हैं, थोड़ा सा उनको भी हिंदुओं का भी वो जो अच्छी चीजें हैं वो भी, ये जो अकबरी दीन का कंसेप्ट है ना, जो हमारे शहनशाह थे मुगलिया, उसने भी यही किया था ना कि इधर से थोड़ा उधर से थोड़ा करके, ताकि यार लोग खुशी खुशी रहें और मेरी जो हुकूमत है वो सही चले। तो इन लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने ये बात फरमाई है कि उनकी हकीकत फिर ये बन जाती है कि ना वो इधर के रहते हैं, उधर के रहते हैं। एक और आयत है जिसमें अल्लाह ताला उनकी मिसाल बयान करते हैं कि इनकी मिसाल ऐसी है, ये लोग किनारे पे जाके इबादत करते हैं, यानी हर बंदे का एक दर्जा होता है ना। तो इसमें ये चीज अगर हम देखेंगे तो फिर इन आयात की मजीद हमें जो है ना समझ खोलेगी इंशाल्लाह।
जी उमर भाई, जजाकल्ला खैर। इसमें ये जो ह्यूमन टेंडेंसी का आपने तस्करा फरमाया ना, ये इसे कहते हैं कि तथबीक करना, रिकन्सलिएशन। रिकन्सलिएशन अगर आप मॉरली देखें तो एक बड़ी अच्छी चीज होती है कि आप दो चीजों को रिकनसाइल कर रहे हैं ना, दो लोग लड़ रहे हैं, आप रिकनसाइल कर रहे हैं, उनको सुलह कर रहे हैं। और जैसा कुरान मजीद में सुबह मतलब शुरू में भी हमने वो तस्करा अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्ना इन्ना मनाहनु मुस्लिहून, कि हम तो सुलह करवाने वाले, हम तो खैर फाई करने वाले लोग हैं। तो
बिल्कुल
साहब अच्छा, ये बड़ी, अगर आप जिस तरह मैं आपसे पहले हमने तब भी इसको डिटेल में डिस्कस किया था, ऑन द सरफेस ये बड़ी अच्छी चीज लगती है। और इंटरेस्टिंगली कुफारे मक्का के अंदर भी एक ग्रुप था जो लात की पूजा करता था, इबादत करता था। एक लात उनकी एक गॉडेस थी, ताइफ वाले लोग थे वो करते थे, जो उनका स्कीफ कबीला था ना, बनू स्कीफ। कुरैश के भी कुछ लोग उसको अच्छा समझता, लेकिन मेनली वो था, उसको कहते थे कि ये खाना की और रिस्क की खुदा उसको अल्लाह ताला ने उसका मुकर्रर किया हुआ है लात को। और दूसरी साइड पे उज़ा थी, उसको वो वॉरियर गॉडेस के तौर पे समझी जाती थी कि जंगजू, और वो भी कुरैश मेनली उसकी और उसके नेबरिंग कुछ जो कबाइल थे वो करते थे। और इनका दोनों में आपस का, इनके भी ना थोड़ी सी आपस चपकलिश भी होती थी कि मेरी मेरा खुदा बड़ा है, तुम्हारा खुदा बड़ा है ना, थोड़ा सा। तो एक तीसरा ग्रुप था जो दोनों लात और उज़ा की पूजा करता था। वो कहते थे दोनों की पूजा करो, मसला क्या है, लड़ाई क्या है, दोनों ही अपने अपनी जगह पावरफुल है। तो मैं को कि जुलमत के अंदर भी ना ये सारी की सारी ये माइंडसेट वर्क कर रहा था, क्योंकि बेसिक ह्यूमन माइंडसेट है कि उसने सुलह करने की कोशिश करनी है। वो कहते हैं दोनों का एवरेज ले लो, मीन ले लो, दोनों को आधी आधी पावर दे दो। और इसलिए जहां पे कुरान मजीद में ना जुलुमात आता है, ये अंधेरा नहीं आता, अंधेरे आता है कि ये अंधेरे हैं। नूर तो एक है लेकिन अंधेरे कई हो सकते हैं, अंधेरों के काफी शेड्स हैं, उनमें डिफरेंट गहराई है। लेकिन जब हम जैसे मैं दीन और दुनिया वाली गुफ्तगू पहले थोड़ी सी उसकी तरफ हिंट किया था, तो हम लोग जब ये कहते हैं कि थोड़ा दुनिया पे चलने, थोड़ा दीन पे चलने, तो वो हम इसी किस्म के एफर्ट कर रहे होते हैं, मुनाफिकाना एफर्ट, के उन दोनों चीजों को मीन लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन आप ये देखेंगे एक खालिस चीज है जो अल्लाह की हिदायत है, उसमें आप अपनी अकल से अपने शऊर से आप उसमें कोई चीज ऐड करके उसको गंदा ही कर सकते, उसको खालिस नहीं कर सकते। तो इसकी इसके अंदर रिकंसिलेशन वाली जो भी एफर्ट होती है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी आती है कि हालात के मुताबिक मैं उसको थोड़ा सा तोड़ मोड़ लूँ। हम इसको थोड़ा सा, जिस हमारे मेरा ख्याल हमारे यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी एक किसी उन्होंने कहा था प्रेसिडेंट ने कि उलेमा कराम जो है वो सूद के लिए गुंजाइश पैदा करें, क्योंकि जो वो बड़ा मशहूर हुआ था ये मकूला। लेकिन देखें जो जो पोजीशन ऑफ पावर में है जो सोसाइटी को चलाने के लिए, उनके उन लोगों का ख्वाहिश ही होती है, जैसे आप दीन अकबरी का भी हवाला दिया कि यार हमने सोसाइटी चलानी, सोसाइटी में फसाद फैलेगा तो ये आप स्ट्रिक्ट या रिजिड पोजिशन ना लें, सूद के लिए गुंजाइश पैदा करें। अगर आप थोड़ा सा हमदर्दाना व्यू से सोचें उनके लिहाज से, तो उनका उनका मकसद ये होता है, क्योंकि वो समझ होता है कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं हकीकत के लिए। इस्लाम भी एक पर्सपेक्टिव ही है, मतलब ये नहीं कि इस्लाम दी पर्सपेक्टिव है, ये अटल हकीकत है। वो उसको इस तरीके से नहीं देख रहे होते कि अल्लाह की तरफ से हिदायत आई है। वो कहते हैं कि नहीं, ये भी एक चीज है और सोसाइटी में चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, तो हमें सबका कुछ कॉमन मलबूबा बना लिया जाए। तो वो जो दीन अकबरी है वो भी इसी की एफर्ट थी, और किसी न किसी फॉर्म में ये एफर्ट जो लोग पोजिशन ऑफ पावर में होते हैं उसको एग्जीक्यूट करते हैं, और बाकी जो आम लोग होते हैं हम भी अपनी जिंदगियों में किसी न किसी तरीके से रल मिला के काम चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसलिए इस पर अल्लाह ताला से थोड़ी सी हमें माजत करनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए कि हम इस किस्म की एफर्ट ना करें, क्योंकि ये मुनाफिकाना तर्ज अमल है और उसकी तरफ ये लीड कर सकता है, और उससे बच के इंसान को रहना चाहिए, और हिदायत के साथ किसी और चीज को मिक्स नहीं करना चाहिए, चाहे वो जितनी मर्जी आपको अकली तौर पे खूबसूरत लग रही हो कि अच्छा ये चीज अकली तौर पे बड़ी। इसमें डिफरेंट शेड्स हैं, अगर आप मुस्लिम जो तहरीकें हैं उनकी भी गुमराही का असबाब निकालें, तो उनमें कुछ लोगों ने जो थोड़ा सा इस तरफ चले गए वो साइंस के साथ कुरान को तत्बीक करने की कोशिश करते रहे, और उन्होंने साइंटिफिक जो अल्लाह ताला ने जो मेरिकल्स मौजदात बताए हैं उनकी इंटरप्रिटेशन भी बेसिकली साइंटिफिक फॉर्म में करने की कोशिश की कि ये चीज ऐसे नहीं हो सकती वैसे। तो उन्होंने कुरान मजीद का जो पूरे का पूरा जो हिदायत का मरकज है जैसे अल्लाह बात करते हैं उसको उन्होंने तोड़ ही दिया कि फरिश्ते फोर्सेस ऑफ नेचर हैं। इस तरीके से आप लोग इन गुमराहियों से वाकिफ होंगे। तो ये इसी तरीके से पैदा होती है कि जब इंसान ये सोचता है कि जो सोसाइटी में एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसके साथ मैं किसी और चीज को ऐड करके कोई तीसरी नई चीज पैदा कर सकता हूँ। लेकिन जो ईमान का जो मकसद है और जो ईमान का तذکرہ है वो यही है कि कुरान है, और ये अपने हदायत में कुरान और सुन्नत काफी और शाफी है, और ये सब इसके मुकल्लफ हैं, मुखातिब हैं, उसकी पैरवी करनी है। जज़ाकअल्लाह।
मैं बस ये आयात आप लोगों को शेयर किए, मैंने दिखाना चाहता था, जो मैं रेफरेंस दे रहा था कि इसी बात पे जो अभी उमर भाई ने भी बात की है, इसी पे ये आयात हैं, और यहाँ से फिर आपको उनकी तफसीर क्लियर होती है और किस तरह ये जुड़ती है माशाल्लाह, कि अल्लाह ताला जिस तरह सूरतुल इमरान में फरमा रहे हैं कि और जो कोई इस्लाम के सिवा कोई और दीन इख्तियार करेगा तो वह हरगिज इससे कबूल नहीं किया जाएगा और वो आखरत में नुकसान उठाने वालों में से होगा, एक ये वाली मशहूर आयत है, और दूसरी ये सूरतुल हज की आयत है जो पहले मैंने रेफरेंस दी थी आपको, कि और बाज लोग अल्लाह की इबादत किनारे पे खड़े होकर करते हैं, अगर इन्हें कोई भलाई पहुंचे तो मुतमैन हो जाते हैं, और अगर कोई आजमाइश आ जाए तो उल्टे फिर जाते हैं, उन्होंने दुनिया और आखिरत दोनों का नुकसान उठाया, यही सारी खसारा है। तो ये वो तबका है जिसका पहले मैंने इशारा किया था, जो मुनाफिकीन के भी दर्जात थे ना, एक इन कुछ तो बहुत ही शैतानों के शैतान बन गए थे, और कुछ ऐसे थे कि जो बैन बैन थे। तो उन लोगों का जो है ना, अल्लाह ताला ने यहाँ पे फरमाया है कि दरमियान वाला कोई चक्कर नहीं है, ये जो आप लोग कर रहे हैं ना कि कोई दरमियान का हाल निकल आया, हमारा असल में अल्लाह ताला कोई दीन इसके बगैर कबूल नहीं करेगा, क्योंकि हक और जो जुल्मत है ना उसमें तफरीक है, और अगर मिक्स भी कोई चीज़ बनाओगे लाजमी बात है उसका नुकसान इंसानियत को ही होगा, अल्लाह ताला मुख्तलिफ वक्त फरमा रहे हैं।
मेरे ख्याल आतिफ भाई भी इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे थे, थोड़ी देर अनम्यूट हुए थे।
जी उमर भाई, आपने जो बात की थी मुझे बड़ी अच्छी लगी है माशाल्लाह, कि वो जो सूद वाली जो आपने बात की, एक चीज जो मैंने भी महसूस की है कि जिस तरह फिर आपने वो जिक्र किया कुरान का भी, कि कुछ लोगों ने कोशिश की उसको साइंटिफिक तरीके से उस तरीके से उसको अपने वजाहत करने की या उसको ढालने की, तो उसमें अक्सर जहन में यही चीज आती है कि चाहे आप किसी की भलाई के लिए कुछ करना चाहें, लेकिन अगर आप उसको सही रास्ते के मुताबिक या सही तरीके और फॉर्मूले के मुताबिक उसको लेकर नहीं चलते, तो उसका जो एंड रिजल्ट निकलता है ना, वो हमेशा नुकसान में ही निकलता है। चाहे आप जितने मर्जी मुखलिस हों, अब वो जिन्होंने कहा था जी कि सूद की गुंजाइश निकालें, मकसद तो उनका यही था अगर ये कोई इसकी सिलसिला बन जाता है तो लोगों को ज्यादा उससे कारोबार मिलेगा, लोगों को उससे आमदन होगी, लोगों का जिंदगी का मेयार जिंदगी है वो बेहतर होगा, कारोबार आएगा, खुशहाली आएगी, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन उसके फिर जो नताएज हैं वो जब सामने आएंगे तो तब पता चलेगा कि ये असल में हमने कोशिश तो भलाई की थी, लेकिन क्योंकि हमने फॉर्मूला गलत इस्तेमाल किया तो उसकी वजह से नुकसान ही हुआ। और इसी तरह कुरान की जिन लोगों ने वजाहत करने की कोशिश की है साइंसी बुनियादों पर और इन तमाम चीज़ों पर, तो उसका भी जो एंड रिजल्ट सामने आया है वो अब हम सब के सामने है। जिस तरीके से अल्लाह ताला ने उसको बयान, अब अल्लाह ताला से बेहतर तो कौन बयान कर सकता है। अब तो यही वाली बात है ना कि अल्लाह को पता नहीं था, हम जो है ना उसकी ज्यादा अच्छा, खुदा ना खास्ता ज्यादा बेहतर उसकी वजाहत या तशरीह करना चाह रहे हैं, और अभी तक वो चीज़ जो सामने नहीं आई थी और हम उसको सामने लेकर आना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ वाकई बहुत अहम है कि चाहे इंसान जितना मर्जी भलाई की उसकी सोच हो, उसकी अच्छी नेकी की सोच हो, लोगों के लिए फलाह बहबूद का उसका इरादा हो और नियत हो, लेकिन जब तक वो उस सही और दुरुस्त रास्ते पर चलकर उस मकसद को पूरा नहीं करेगा तो उसका जो नतीजा है वो कभी अच्छा सामने नहीं आएगा।
जी जी
ये
बिल्कुल
मेरा
जजाकल्ला।
सवाल है तो एक सवाल है बस आखिरी के उमर भाई, आपने अभी जिक्र किया था कि जो अल्लाह ताला जो रोशनी है वो दो है, जिया और नूर। जिया वो है जो कि बिल्कुल जो डायरेक्ट सोर्स से आ रही है, और नूर जो है जो एक रिफ्लेक्शन है। अब अल्लाह ताला को अगर हम देखें, अल्लाह ताला की जात को, वो भी एक डायरेक्ट सोर्स ऑफ हिदायत है, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने लिए भी नूर का लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है?
मैं वैसे थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा, उमर भाई ने वो तذکرہ किया था इसका, लेकिन ये मेरे ख्याल कंप्लीट पिक्चर नहीं है नूर की। नूर एक बहुत ही, अगर आप गौर करें इल्मुल कलाम है तो उसके ऊपर बहुत ही बहसें हुई हुई है। लेकिन सिंपल फॉर्म में जो जो नूर है वो एक स्पिरिचुअल लाइट के फॉर्म में ना, उसको गाइडेंस के फॉर्म में लिया जाता है कुरान मजीद में। जब इसका तذکرہ आता है ना, क्योंकि मैंने जुलुमात इल नूर, या ये कुरान नूर है, या मेरे ख्याल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी कहा गया कि सिराजम मुनीरा, उसके उनकी तरफ तस्करा करके भी। जब फिजिकल लाइट की फॉर्म में जब डिस्कशन होती है तब जया है, वहाज है, और इस तरह एक और मेरा ख्याल है एक और लफ्ज़ है जो कुरान मजीद में इस्तेमाल होता है, वो फिजिकल लाइट की फॉर्म में। तो उसमें फिर, और वहां से फिर जब उसके अपोजिट वो कॉन्टेक्स्ट में आ रहा होता है ना, जब वर्ड कुरान के जब वो कॉन्टेक्स्ट में आता है, और उसमें जब एक आयत है मेरा ख्याल है कुरान मजीद में जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला ने सूरज को जया बनाया है और कमर को नूर बनाया है, तो उसमें वो दोनों को एक फिजिकल फॉर्म में डिस्कस किया गया है। तो वहां पे फिर जो उसको एज रिफ्लेक्टेड लाइट कहा जा सकता है, इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम अ डायरेक्ट सोर्स, फिजिकल फॉर्म में। तो मैं तो इसको इस तरह से समझाऊं, बाकी उमर भाई ऐड कर सकते।
मैं जो इसको समझाऊं, बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। आपने कॉन्टेक्स्ट को देखना होता है कि लफ्ज़ किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो रहा है, और वहाँ से माने खुद ही निकल आते हैं फिर। और ये बिल्कुल सही है कि ये इसके फिजिकल माने हैं, ये इसके क्या कहते हैं, जो अदबी माने नहीं है इसके। ये मैं ये समझता हूँ कि कुरान, जब खुदा अपने आप को नूर कहते हैं तो वो एज अ फिजिकल फॉर्म में नहीं कहते हैं अपने आप को नूर, उसको एक क्या कहते हैं, तशबीह के मामले में कहते हैं। एक चीज, अब ये ज्यादा बहस बढ़ रही, अल्लाह ताला को फिजिकल कंसेप्ट में अपने जहन में लेके आना किसी भी चीज के लिहाज से ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इंसान की जात के लिए ये मुमकिन नहीं है, उसकी वजूद को, बेशक आप नूर को जहन में रखें। तो अल्लाह ताला ने सिर्फ एक तमसील दी है कि मैं नूर अला नूर हूँ, यानी नूर पे नूर। और जो पूरी आयत है ना, उसको आप देखते हैं तो वो एक एक तमसीलन एक चीज बयान की जा रही है कि किस तरीके से अल्लाह ताला हिदायत का मंबा है असल में सारे जहान के लिए, या सारे जहानों के लिए जो भी आप कहें। उसका दूसरा पर्सपेक्टिव ये है, जिस तरह मैंने पहले बयान भी किया था, कि अल्लाह ताला की जो कुदरतें हैं, उसकी जो रबूबियत है, उसके रहमानियत है, वो रिफ्लेक्ट करती है हर कुदरत के अंदर, हर तख्लीक के अंदर। सही है, तो इस लिहाज से भी वो नूर है। यानी अल्लाह ताला की जो अपनी हमारे नज़र में जितनी हमें बताया गया ना, वो यही है उसका, और वहां पे भी उसका मतलब यही बनता है। इसका कोई फिजिकल माने लेना जो है ना, मेरे नहीं ख्याल के मुनासिब होगा हमारे लिए। उसको उसी तरह हमने इस्तेमाल करना है जिस तरीके से कुरान ने हमें बता दिया है ये क्या चीज़ है। बाहर की डिस्कशन जो है ना, मेरे ख्याल में उसमें कुछ चीज़ें काफ़ी फिर ज़्यादा हो जाती हैं।
जी, तो वो इसी वजह से मैंने कहा कि वो कुरान असल में जो चांद के लिए इस्तेमाल किया गया ना नूर, तो उसमें फिर लोगों ने उसको, तब वो फिजिकल लाइट की फॉर्म में, तब लोगों ने कहा कि अच्छा इसको रिफ्लेक्टेड लाइट समझा जाएगा। लेकिन वैसे नूर जो है वो नूर लाइट, उसका तर्जमा भी नहीं सही। ये लगा बहस
हाँ
है कि कुरान का जो तर्जमा है वो मुमकिन ही नहीं है। जो कुरान की टर्मिनोलॉजीज है वो बड़ी स्पेसिफिक होती हैं, बड़ी जामे होती हैं। इसलिए तो अल्लाह ने कुरान अरबियाँ अरबी में नाजिल फरमाया, किसी और जबान में नहीं, क्योंकि बाकी कोई भी लैंग्वेज है वो कुरान के अल्फाज के मुतबादल नहीं है। अल्फाज बड़े कीमती हैं, वो अपने कॉन्टेक्स्ट में अपने मीनिंग को प्रॉपरली कम्युनिकेट करते हैं। और ये खैर ख्वाही के अंदर मैं एक चीज ऐड करूंगा, मुझे याद है मेरे एक उस्ताद थे, तो जब बंदा शुरू शुरू में 18-19 साल का था, तब हम को डिस्कशन कर रहे होते थे सीखने के लिए, तो वो तब तो उन्होंने कहा था कि अपनी खैर ख्वाही के, इंसानियत की खैर ख्वाही के जज्बे में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे निकलने की कभी कोशिश ना करना, क्योंकि इंसान, और ये बड़े एक उन्हें तंबीह की फॉर्म में कहा था, क्योंकि ये शैतान का एक वार होता है कि जी हम कोई ऐसा रास्ता निकाल लें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते से सेपरेटली होके निकल जाए, इनको बायपास कर दे। मतलब डायरेक्टली इंसान ऐसे नहीं सोच रहा होता, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकली देखें तो वो बायपासिंग ही होती है। तो ये चीज है कि हम उम्मती हैं, हमने उनकी इत्तबा में रहना है हर वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब तक ये चीज आपके माइंड में हमेशा एक्टिव रहेगी, आप शैतान के काफी जो वारनों से बच जाएंगे, जिसके साइंटिफिक लोग शिकार हो जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि वो उसको साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन में पड़ जाते हैं। क्योंकि ये चीज को समझना और उसको इंटरनालाइज करना बड़ा जरूरी है कि कोई भी हिदायत की शक्ल मुतसव्वर नहीं हो सकती जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो चीज हदायत ना हो। ये बड़ा
बिल्कुल
मुश्किल काम है, और अक्सर यहाँ पे हम क्योंकि वेस्ट में रहते हैं तो ये चीज भी होती है कि यहाँ पे अच्छे लोग हैं और वो ऐसा है और वैसे है, जन्नत में जाएंगे जहन्नुम में जाएंगे, लोग ऐसी बात करते हैं। मेरे लिए तो मैं तो बहुत बायस्ड आदमी इस बारे में, कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत कोई मजाक नहीं है, कि उसको अगर हम बायपास कर दें और हम कहें हाँ उनके लिए भी कोई सिचुएशन बन सकती है, तो ये चीज है बड़ी क्लियर होनी चाहिए। और इस बारे में जो बायसनेस है, यही बायसनेस आपको मुस्लिम बनाती है कि आप, क्यों आपका अल्लाह के साथ कोई डायरेक्ट ताल्लुक तो नहीं है, आपका अल्लाह के साथ जो भी ताल्लुक है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान लेकर आए हमें, आपने ये दिया, अपनी सुन्नत दी, उस पर अमल करके दिखाया अल्लाह के अहकाम पर, तो उनकी उनकी पैरवी में ही हमारी हदायत है। हम उनसे इंडिपेंडेंट होकर हदायत की तरफ नहीं पहुंच सकते।
इसी में एक और पॉइंट मैं ऐड करूंगा, क्योंकि एक डिस्कशन अभी चल रही है मेरे साथ कि जो कुरान है ये आप किस तरह साबित करेंगे कि खुदा का कलाम है। पहले मैं तो कहता हूँ मैं कौन होता हूँ साबित करने वाला, लेकिन ये है कि एक जो चीज़ आपने जो बयान की है ना उसमें नुकता जो उलमा मिलाते हैं वो ये है कि कुरान अगर इसी तरह किताब दे दी जाती ठीक है तो वो उसकी सबूत के लिए काफी नहीं था। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी हैसियत है और उनका उनका जो नुजूल है हमारे लिए और उनका जो वजूद है वो कुरान का सबूत भी है। यानी कि कुरान वैसे नहीं किसी ने, यानी अगर वैसे ही किताब आ जाती तो लोग कहते पता नहीं वैसी कहाँ से आ गई, पता नहीं खुदा की है भी कि नहीं है। तो एक तो कुरान अपनी जात को खुद लारैब साबित करता है, लेकिन उस लारैब का एक हिस्सा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी खुद है। अगर आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान से अलहदा कर देंगे ना तो आपकी किताब भी साबित नहीं होगी कि वो कुरान अल्लाह की किताब है। वो इस अंदाज में कि वो एक जीते जागती शख्सियत थी और किताब जिस तरीके से उन पे नाजिल हुई लोगों ने देखा सुना उनको वो एक हिस्ट्री का एक रिकॉर्ड बन गया ठीक है ना। यानी एक किताब में अगर गलतियां नहीं है, मैं उसको उल्टा करके बताता हूँ, अगर एक किताब हम कहते हैं जी ये किताब इसलिए अल्लाह की किताब है क्योंकि इसमें आपको गलती आपको नहीं मिलेगी, जरा खुदा कुरान खुद भी कह रहा है, तो किसी किताब में गलतियों का ना होना इस चीज का सबूत थोड़ा होता है कि वो अल्लाह की किताब है। अल्लाह की किताब का होने का वजूद यह है कि वो एक नबी को मिली है, एक जीते जागते एक उसने एक जिंदगी गुजारी है, उसकी एक हिस्ट्री है, उस पर दर्जा बदर्जा किताब उतरती रही है, वो लोगों को सुनाते रहे हैं, फिर उन्होंने जंगें लड़ी हैं उनकी जो, यानी सुन्नत रसूल को अगर आप कुरान से हटा लेंगे तो आप किताब को भी साबित नहीं कर सकते हैं।
बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, इसी चीज का जिक्र मौलाना इसहाक साहब ने भी किया था। इसी चीज को अगर आप कुरान को या अहादीस को या सुन्नत को अगर आप नहीं मानते, तो फिर तो कुरान को साबित करना भी आपके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो मुनकरीन हैं, जो मुशरिकीन हैं, वो आपसे पूछेंगे कि भाई इतना आप जो कहते हैं कि ये एक इनकलाबी किताब है या एक नबी आया था, उसने ये इनकलाब बर्पा कर दिया, उसका कोई सबूत तो हमें दो ना, उसका कोई हमें हवाला दो कि हाँ भाई ये किताब आई थी, ये बंदा आया था, उसने आके ये काम किए और उसके नतीजे में ये फलां फलां काम हुआ, फलां इलाका, फलां लोग, फलां बस्ती, फलां मुल्क जो है या पूरा एक जो खत्ता है उसमें ये फलां फलां तब्दीली आई, और वो चीज हमें तारीख से और हर तरीके से उसका सबूत मिलता है। मकामात मौजूद हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, या रोजा मुबारक मौजूद है, और ये सारी चीजें और उन सहाबा की जो नस्ल नस्ल दर नस्ल जो चीजें आ रही हैं, हुजूर की सुन्नत जो चलती आ रही है, ये सब चीजें उस चीज का सबूत हैं। इस चीज का बहुत बड़ा एक रोशन दलील है ये किताब जब आई, और उसको फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात के जरिए, अपनी अमली जो उनके काम थे जिसको हम सुन्नत कहते हैं, उसके जरिए उन्होंने वो सब चीजें प्रैक्टिकली अमली तौर पर करके दिखाई, और उसी के नतीजे में एक आलमी जो तब्दीली है वो सामने आई।
चलें अब इसमें बस
बहुत पूरा हो
एक
गया
बड़ी
हमारा।
अच्छी हमारी होगी। मैं थोड़े से एंड पे एक फूड फॉर थॉट डिस्कशन मेरा ख्याल है उस पर हम अगले सेशन में कर लेंगे, लेकिन अभी ये
करना
बात
पड़ेगा।
हो रही है तो जो कुरान मजीद का जो सबूत की वाली डिस्कशन है, लोग इस बारे में जो भी बात करते हैं, काफी इस पर लिखा भी गया है, किताबें भी। एक देखें, एक चीज होती है जो इसकी दाखली, जो इसका सबूत है ना, और वो दाखली सबूत तो है जो कुरान मजीद के अपने अंदर है, और इसका खारजी सबूत है जो आप लोग गुफ्तगू कर रहे हैं कि जिस तरह तारीख की किताबों में और ये सारे मामला हैं। लेकिन जो इसका दाखिली सबूत है, अल्लाह ताला ने उसी को बतौर चैलेंज कुरान मजीद में जगह जगह तस्करा फरमाया कि तुम इस तरह की 10 सूरतें ले आओ, एक सूरत ले आओ, तुम लोग नहीं ला सकते। ये जो चैलेंज है ना, ये तो क्यामत तक के लिए चैलेंज है। ये ऐसा चैलेंज नहीं है जो कि अभी अभी इनवैलिड हो गया, ये तो वैलिड चैलेंज है। और ये अगर लोग इसके ऊपर फोकस करें तो ये चीज अल्लाह ताला ने क्यामत तक के लिए इंसानों को चैलेंज दिया हो कि तमाम जिन इंसान जमा हो जाए तो इसकी मिसल कोई सूरत ले आए। ये छोटा चैलेंज नहीं है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये लिविंग, इसलिए कुरान को लिविंग मेरिकल कहा जाता है कि अल्लाह ताला का एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मौजजा अता फरमाया। अच्छा, और दूसरी एक चीज है जो अभी, क्योंकि सुन्नत का मामला ये है कि लोग उसको इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं हदीस के साथ, और इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं सीरत के साथ, और इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती पसंद और नापसंद के साथ, तो मैं थोड़ा इस बारे में थोड़ा स्ट्रिक्ट हूँ। मैं कहता हूँ कि जो 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 कुरान है वो जिस अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत है, इसी तरह सुन्नत भी अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत थी जो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई। जैसे नमाज का तरीकेकार है, ये ऐसा नहीं है जो अल्लाह के नबी ने अपनी मर्जी अपनी ख्वाहिश से तय कर लिया, उसके औकात, उसके तादाद, वो हर चीज़ जो है अल्लाह ताला ने जिब्राइल सलाम के थ्रू मुतय्यन की। तो वो सुन्नत है, तो सुन्नत भी जो है वो वही की ही एक शक्ल है, और वही की दो शक्लें हैं, और ये दोनों शक्लें जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, अलहदा नहीं हो सकती। अगर आप सुन्नत को अगर अलहदा कर देंगे तो आपको नमाज का हुक्म समझ नहीं आएगा कि क्या करना है। और ये प्रॉब्लम होती है हमारे अक्सर लोगों ने इसी तरफ भी गुमराहियां फैली हैं कि उन्होंने कुरान से ही नमाज का कोई इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश की और सुन्नत को देखा ही नहीं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे इसके ऊपर इस हुक्म पे अमल किया, और उन्होंने कैसे आगे वाली पूरी उम्मत मुसलमा उस हुक्म पे कैसे अमल कर रही है। तो ये चीज काफी कंफ्यूजिंग हो जाती है। वो जिस तरह मैंने आप पहले अर्ज किया ना कि अब अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी भी तरीके से बायपास करने की कोशिश करते हैं ना, वो चीज गुमराही का सबब बनती है।
ऐसा ही है, जिस तरह फिरके मुसलमानों में फिरके बने हुए हैं, नाम नहीं लेंगे हम किसी का भी, तो वो मतलब है नमाज, उन्होंने कहते अब नमाज की जरूरत नहीं है, ये उस वक्त जरूरत थी, और अब ना आपको मुसलमान कहते हैं, लेकिन यही चीज है। जज़ाकअल्लाह, आप लोगों ने शमूलियत इख्तियार की, हमारा घंटा माशाल्लाह पूरा हो गया है, और
जी उमर
बहुत
भाई,
अच्छी
थोड़ा
बात,
अगर इजाजत हो तो 2 मिनट ले सकता हूँ? जी
आप ले लें, ठीक है। मैं,
बहुत
आप लोग ना
शुक्रिया।
थक जाए, मैं तो नहीं थकता हूँ।
उम्र भाई का तो माशाल्लाह, उम्र कमाल भाई का बड़ा स्टेमिना है माशाल्लाह।
माशाल्लाह, जजाकअल्लाह। बिल्कुल उमर भाई, आप वाली बात है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाईपास करने से ही जो है वो चीजें गलत गलती की तरफ, गुमराही की तरफ जाती हैं, और इसको और मुझे अक्सर शैतान की, अब इसको मैं जीनियस तो नहीं कहना चाहिए, ईवल जीनियस कहना चाहिए, कि वो ऐसे ऐसे तरीकों से इंसान को लेकर जाता है उन रस्तों की तरफ कि इंसान को उसका तसव्वुर भी नहीं होता, और वो आहिस्ता आहिस्ता उन खाइयों के अंदर, उन गहराइयों के अंदर वो गिरता चला जाता है। इसको लोग फिर वो देते हैं नाम इज्तिहाद का, कि जी उस दौर के हिसाब से वो दौर और था, वो वक्त और था, उस वक्त के तकाजे कुछ और थे, आज के तकाजे कुछ और हैं, तो लिहाजा हमने आज के दौर के जो तकाजे हैं उनको सामने रख के फिर हमने इन चीज़ों को सामने रखना है, तो लिहाजा उस वक्त की जो चीज़ें थी वो अब उस तरीके से सामने नहीं आ सकती हैं, उनको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो लिहाजा वो इज्तहाद के नाम पर और एक जिद्दत के नाम पर, और फिर उसमें वो भलाई का भी एक फैक्टर आ जाता है कि जी हमारी नीयत तो अच्छी है, हम तो भलाई करना चाह रहे हैं और हम तखरीब तो नहीं करना चाह रहे, हम फसाद फैलाना तो नहीं चाह रहे, हमारा तो मकसद ही भलाई है, तो लिहाजा इतनी तो गुंजाइश अल्लाह ताला ने भी दी है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इज्तहाद का और इन सारी चीज़ों का मशवरे का हुक्म दिया है, तो लिहाजा क्योंकि हमारी नीयत अच्छी है तो लिहाजा हम उसको इस तरीके से कर सकते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जब बंदा फिर उस रास्ते से हटता है सुन्नत के तरीके से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से, कुरान के तरीके से, अपनी अकल को बीच में शामिल करके जब वो इसकी वजाहत करने की और उसको बेहतर अपनी तौर पर अपने जहन के मुताबिक अपनी समझ के मुताबिक बेहतर तौर पर करने की कोशिश करता है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको इंसान जो है दूसरी तरफ निकल जाता है। वो बुत परस्ती भी इसी तरीके से शुरू हुई थी कि नीयत तो उनकी अच्छी थी कि जी हम इनको देखेंगे तो हमारा ईमान रोशन होगा, हमारा ईमान ताजा होगा, और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो किस बात कहाँ से कहाँ पर निकल गई।
हाँ, वो कहते हैं कनेक्टिविटी होनी
एक
चाहिए।
क्रिश्चियन ना, एक क्रिश्चियन सेंट गुजरा है, मुझे उसका नाम सेंट ऑगस्टाइन, आई डोंट नो, मुझे भूल गए। तो उसके बड़े मजे का एक मकूल है, वो कहता है द रोड टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। जहन्नुम का रास्ता है वो अच्छी नीयत से बनाया जाता है। और वो क्योंकि क्रिश्चियनिटी के अंदर भी काफी इस तरह के इश्यूज थे, और मुसलमानों के अंदर भी वो इश्यूज आए हैं, खास तौर पे जो हमारी फिकुल इस्लाम ही है, इस्लामी जो फिका है उसमें काफी चीजों को में अंदर उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म को प्रॉपर तरीके से नजरअंदाज किया गया उसको। और वो सिर्फ ये नहीं है कि एक छोटे स्केल पे, उसको मैसिव स्केल पे इम्प्लीमेंट किया गया इस चीज को। तो ये चीज मतलब ये मॉडर्न प्रॉब्लम भी है, लेकिन ये ओल्ड प्रॉब्लम भी है। आप क्लासिकल वे में भी, फॉर एग्जाम्पल, आप लोग उस बारे में खुद पढ़िएगा, जो तलाक का मसला है हमारे माशरे में, उसमें आपको पता है कि सूरह तलाक एग्जिस्ट करती है। सूरह तलाक एग्जिस्ट करते हुए भी तलाक एक मसला है हमारे लिए, उसके भी मुख्तलिफ तरीके हमें राइज करके रखे हुए हैं, मतलब हैरानी की बात है। और आप, मैंने तो, क्योंकि एक प्रैक्टिकल रियलिटी है, तलाक होती रहती है सोसाइटी में, तो लोग फिर उसके बारे में डिफरेंट
हर
लोगों
वक्त
से जाके
पूछते
फतवे
हैं।
लेते हैं। हाँ जी, हालांकि सूरह तलाक में अलग तरीकेकार बयान फरमाया। मैंने तो जब भी उलमा, जब मैं सीखने की स्टेज पे था, तो लोगों से जाके डिस्कस करता था कि क्या है क्या नहीं, डिफरेंट फिरकों के पास, तो वो ये कहते हैं कि जो कुरान मजीद में तरीकेकार है ये आइडियल है, उसको साइड पे कर दे, अब हम आते हैं आपको बाकी चीजों की तरफ। तो ये चीज जो है इंसानों के अंदर, ये प्रॉब्लम मैं आपसे जो आते हुए आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ ना, ये सिर्फ मॉडर्न प्रॉब्लम नहीं है, ये रिलीजन के अंदर ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली आता है कि जो लोग रिलीजन की कस्टोडियन बन जाते हैं ना, तो वो फिर कहते हैं कि आपने अल्लाह और उसके नबी के दरमियान, हम भी बैठे हुए, आप हमसे होके गुजरे,
हमारे से होके जाना, टिकट इधर से खरीदना
आप हमसे डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं, आपने जाना। तो वो
है
ये चीज
दरवाजे से
है
हम
कि
बैठे हुए
नबी
हैं।
सल्लल्लाहु, हाँ जी हाँ जी, तो वो ये प्रॉब्लम है, वो दरवाजे पे बैठ जाते हैं, और फिर वो उनके लिए बजाय, उनके लिए भी इम्तिहान है एक, इसलिए आलिम के लिए बहुत मुश्किल इम्तिहान है कि वो सिर्फ जो अल्लाह ने नाजिल किया है उसको अवाम तक पहुंचाए, और अपनी ख्वाहिश नफ्स या अपनी जो ग्रोबंदी की जो उसमें साइकोलॉजी है उसको उसमें ऐड ना होने दे। ये बहुत मुश्किल इम्तिहान होता है, क्योंकि वो उस माहौल में पले बड़े होते हैं, और उनके लिए उसकी डिस्टिंक्शन कायम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके अपने
असल में
वेस्टर्न
जी
इंटरेस्ट होते हैं। जी,
जी असल में उनकी भी मजबूरी है, वो बिल्कुल इसी तरीके से है, जब इंसान बिल्कुल बुनियादी शुरुआत में होता है तो वो बड़ी बड़ी चीजों को अगर वो इग्नोर भी कर दे, नजरअंदाज भी कर दे, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता।
अल्लाह।